उसका प्रत्यवाय होता है। इसलिए अधिकारी वर्गों में ही इस तरह की कथा होनी चाहिए। किंतु सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं, कोई भी उनको दर्शन करने से उनके हृदय में प्रेम आ जाएगा। योगी और दूसरे लोग जिनका चित्त शांत हो गया है, विश्वास से उपरक्त हो गया है, उनकी तो बात ही क्या। बल्कि ये दिखलाया नारद जी के बहुत दिनों के संग और उनकी कथा से प्रहलाद महाराज जी परम भागवत हुए, और प्रहलाद महाराज जी के संग से असुर बालक जिनमें भक्ति का लेश संस्कार भी नहीं था, जन्म का पूर्व जन्म का कोई भक्ति का संस्कार नहीं, और विरोधी थे असुरों के संग में रहने वाले, ऐसे लोगों के हृदय में भी भक्ति का संचार कर दिया, भाव अंकुरित हो गया, और वो लोग बड़े प्रेम के साथ में भगवान का गुणानुवाद करने लगे परीक्षित महाराज जी के साथ। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत के लिए, भागवत प्रधान के लिए, उस सभा को अपने अनुरूप ढाल देना क्या संभव था। इसलिए उनके लिए ये नहीं, ये तो और दूसरे लोगों के लिए, स्वयं अधिकारी नहीं है वो, कनिष्ठ अधिकारी हैं या मध्यम अधिकारी भी हैं, भागवत नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए अधिकार निर्णय की बात है। वो लोग अधिकार के अंकुश से सब समय शास्त्रों का अंकुश उस पर नहीं है, ऐसे मुख्य महापुरुष होता है। इसलिए उत्तम श्लोक पदार बिंदयो निषेवया अकिंचन सब न लब्धया तन्मन परा निवृत्तिमात्मनो मुहुर दुख दुःसंग दीनस्य मन समं व्यधार। इसलिए श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज जी के चरित्र में यह बतलाया गया, उत्तम श्लोक पदार बिंदयो, ये कृष्ण ही उत्तम श्लोक है, इनकी सब समय हृदय में सेवा करने से निसेवया अर्थात उनका चिंतन मनन कीर्तन करने से, कौन करने वाले जो नारद ऋषि हैं, ऐसे अकिंचन जो महापुरुष हैं और परम मुक्त हैं, पार्षद शरीर लाभ किए हुए हैं, उनके संग से लाभ करके तन्मन परानिवृत्ति आत्मनो, प्रहलाद महाराज जी महाभागवत हुए और महाभागवत होकर के क्या किया, दुर्संग दीनस्य, असुर बालक जो है वो दुर्संग है, सब समय विषय की चर्चा करने वाले, उनमें भक्ति का कोई लेश मात्र भी गंध नहीं है, संस्कार नहीं है, और अत्यंत दीन है। कैसे दीन, भक्ति जिनमें नहीं है, विषयों में लौलीन है, उनका मन समम व्यधार, वो सम अवस्था को प्राप्त हो गया। सम किसको कहते हैं, सम माने समो निष्ठा, सम कहते हैं निष्ठा, भगवान में निष्ठा उनकी हो गई, साथ ही साथ अत्यंत उच्च अधिकारी हो गई, ये लोग मात्र से उनकी कथाओं से जो कि सप्तम स्कंद में रहनी थी। परमहंस चूड़ामणि जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, व्यास जी का संग पाया, कृष्ण का संग पाया, और कृष्ण की लीला कथा पतंत रहस्य में जो श्रीमद् भागवत है उसको सुनने और सुनाने वाले, और कैसे परम भक्ति जिनके प्रेम जिनके हृदय में है, इसलिए इनके संग मात्र से ही वहां रहने वाले, वहां जो सुनने वाले हरि कथा सुन रहे थे, ऐसे कर्मी ज्ञानी जो कुछ न कुछ कथा सुने होंगे, असुर बालक से उन्नत होंगे, तो उन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ा हुआ, और वो इनके संग से वैष्णव नहीं हो गए, अधिकारी नहीं हो गए, इसलिए जरूर हो, इसका ये तात्पर्य है। दूसरी बात, उनको भगवान कहा गया, कौन कह रहा है भगवान, ये परीक्षित महाराज जी भी कह रहे हैं समझो, या सुख गोस्वामी जी कह रहे हैं। सच्चिदानंद
जो विग्रह भगवान का है उसमें भव होते हैं छह, ऐश्वर्य और माधुर्य के ये निलय होते हैं, आधार होते हैं, ये छह ऐश्वर्य जिनमें रहते हैं, इसलिए वो जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने में भी समर्थ है, इसलिए ये भगवान है। ऐश्वर्य समग्रस्य बीज यजस्य ज्ञान वैराग्यस्य सन्ना भवित्य, इनको भगवान कहते हैं, जो कि जिनमें ऐश्वर्य है। कैसा ऐश्वर्य? ब्रह्मा जी ने देखा उनके जैसे करोड़ों ब्रह्मा लोट पोट कर रहे हैं द्वारका में, और वो चुपचाप ही करने बैठे, इनको स्थान ही नहीं मिला उस बड़ी सभा में, धर्मसभा में उनको जगह नहीं, बाहर से देखा। ऐसे ऐश्वर्य वाले, ऐसे ऐश्वर्य वाले हैं जो कि गरुड़ पर चढ़ करके चले गए स्वर्ग में, और समस्त देवताओं को पराजित कर पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा इस जगत में लेकर गया। एक ही साथ में 16,000 का कितने करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ में करोड़ों करोड़ों कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए, और सभी रानियों के साथ में 16,100 महावाली नरकासुर की बंधक में रखी हुई स्त्रियों के साथ में शादी, अलग अलग कायर भी हो जैसा नहीं, अलग अलग स्वरूप ही में उन्होंने दिया। तो ऐसे ये ऐश्वर्यवान है, और भागवत में सर्वत्र उनके ऐश्वर्य माधुर्य की कथाएं वर्णित की है, इसलिए ये छवों को अलग अलग भव कहते हैं। ये छव जिसमें है ऐश्वर्य, वीर्य, जश, श्री, ज्ञान, जिसमें से चार उनके अपने गुण हैं, भव है ऐश्वर्य समग्र, ऐश्वर्य समग्र वीर्य, जश और श्री, ये चार मूल गुण हैं, और जश के दो भाग हैं, वो हैं ज्ञान और वीर्य, वो स्वयं गुण नहीं है, स्वयं माने गुण के गुण है। इस तरह से छह ये भगवान की भगवत्ता है। तो जिसमें रहे उसको कहते हैं, और भाव अखिल विश्व ब्रह्मांड के गोलोक वृंदावन से लेकर के आप ब्रह्म स्तंभ तक समस्त प्राणियों के भरण पोषण करने वाले जो हैं, भरण पोषण करता भाव, गमने गमयिता, गमयिता माने संचालक, सब विश्व ब्रह्मांड के सब ऊपर से नीचे तक संचालक, और वह अखिल प्राणियों में वास करने वाले अखिल प्राणी उनमें वास करते हैं, इससे जो युक्त हैं उसको कहते हैं भगवान। किंतु व्यास, सु, नारद इत्यादि को भी शास्त्रों में भगवान कहा गया। किस लिए कहा गया? विष्णु पुराण का एक श्लोक दिया इन्होंने, हमारे जीव गोस्वामी ने या सनातन गोस्वामी ने, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानां अगतिम गतिम व्यक्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति सबकी उत्पत्ति करने वाले, प्रलय प्रलय करने वाले, भूतानां अगतिम गतिम, भूत माने प्राणी की गति और अगति, कैसे ये संसार मार्ग में फंसता है भगवान का नित्य दास होने पर, और किस प्रकार से गति फिर भगवान को बहिर्मुख अवस्था से अंतर्मुख अवस्था आकर के भगवान को प्राप्त कर जाता है। व्यक्ति विद्याम अविद्याम च, वो विद्या को जानता है और अविद्या को भी जानता है। विद्या क्या, किस प्रकार से जीव मुक्त हो सकता है,
उसकी अविद्या दूर हो सकती है, बहिर्मुखता दूर हो सकती है। और किस प्रकार से अविद्या, किस प्रकार से जीव बंधन में आता है वो जानता है। जीव कहां जाता है, कहां से आता है, ये गति और अगति। और विद्या माने समस्त विद्याओं का सार भक्ति है। विद्या बधु नाम, विद्या बधु के जीवन है पति। तो ये विद्या क्या माने, श्रद्धा से आरंभ कर श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव भक्ति प्रेम और प्रेम से महाभाव इत्यादि तक, ये सब विद्या है। इस विद्या को जानने वाले हैं, जीवों को ये विद्या को दे करके कृष्ण की सेवा में निवृत्त करने वाले। और अविद्यांच कैसे जीव भगवान के माया के फेर में पड़ता है, जो जानता है सब बाच्यो भगवान इति, उसको भी भगवान कहते हैं। तो इसमें से कोई एक भी हो गुण तो उसको भगवान कहा जा सकता है। ये जगत की सृष्टि स्थिति और विश्व का नियंता नहीं होने पर भी व्यास देव, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी और विशेष विशेष आचार्य लोग को भगवान कहा जा सकता है।
शंकर जी आते हैं,
आएंगे वो भी है। तो इस तरह से ये यहां तक कि जो शुद्ध गुरु हैं, सद्गुरु, इन चीज में विद्या विद्या को जान करके जीवों की गति अगति को जानने वाले हैं। किंतु इन सबों में सबसे अधिक ये जानने वाले कौन है, सुखदेव गोस्वामी। इसलिए इनको भगवान कहना कोई असंगत नहीं है, इसलिए इनको भगवान कहा गया है। विशेष करके सुखदेव गोस्वामी जी, व्यास जी, नारद जी, इन छह तत्वों में अविद्या है। कौन तत्वों में, विश्व की उत्पत्ति कैसे होती है, लय कैसे होता है, पालन कैसे होता है, प्राणी लोग कहां जाते हैं, कहां से आते हैं, उनकी विद्या और अविद्या, संसार बंधन और उनकी मुक्ति, ये सब विषय में तत्वों को जानने वाले हैं, इसलिए इनको भगवान कहा गया है। भागवत के नौवें स्कंद में ये देखा जाता है, साधुओं हृदय मध्यम, साधु नाम तुम हृदय तुम हम मदनते न जानती ना ही तिद्रो मना कपति। दुर्भाषा ऋषि के साथ प्रसंग में ये कहा गया है। दुर्भाषा ऋषि सब जगह हार करके चले गए, अंत में भगवान नारायण के पास में पहुंचे और चक्र से अपना पिंड छुड़ाने के लिए उनसे प्रार्थना की। तो वो प्रभु कह रहे हैं जहां कांटा गड़ता है वहीं से ये निकलेगा, जहां अपराध होता है वहीं से अपराध दूर होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। कहा जाता है कि मैं स्वतंत्र हूं, सर्वतंत्र स्वतंत्र और स्वयं स्वराट हूं, किंतु यह कहने के लिए मैं भक्त लोगों का हृदय मैं हूं और मेरा हृदय वो भक्त है, भक्तों के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता और भक्त भी हमको छोड़कर के और कुछ नहीं जानता, वो सब पूर्ण रूप से हमारे ऊपर नाश्रित और मैं भी उनके अतिरिक्त दूसरों को नहीं जानता, इसलिए आप जाइए वहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्थात साधु, अर्थात मेरे जो भक्त चूड़ामणि हैं वो मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूं। इसलिए भगवान से पृथक जब भगवान का हृदय ही भक्त है तो भगवान से अलग नहीं हुआ। किसी भी व्यक्ति का हृदय ही वो व्यक्ति होता है, आ रहा है समझ में, किसी व्यक्ति का हृदय ही वह स्वयं है, यदि हृदय ना है तो वो व्यक्ति ही नहीं रह सकता। और ऐसा चीज जो भगवान ही स्वयं है, भगवान का हृदय, और वो कहेंगे हमारे भक्त लोग हैं, तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं हुआ। इसलिए पृथक भगवान अपने से पृथक उन भक्तों को नहीं मानते और भक्त लोग भी अपने से पृथक प्रभु को नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान ने और भी कहा है, सच पूज्यो यथाश्रम, जो लोग हमारे परम भक्त हैं वो हमारे जैसा ही पूज्य होता है और हमारे समान ही देयम उनको देना चाहिए। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, और उनका प्रसाद भी उसी तरह से लेना चाहिए जैसे मेरा। और ऐसे लोगों को आचार्य मां बीजानिया हमको ही समझो जिम्मे। इसलिए स्थान स्थान पर शास्त्रों ने ऐसा कहा है, भगवान के सहित भक्तों का अभेद ही दिखलाया गया है। यद्यपि वो वैसे सर्वशक्तिमान नहीं है, जगत की सृष्टि नहीं कर सकते, किंतु वो प्रभु से जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। तो एक ही बात है, उनके हृदय हैं, इसलिए इनको भगवान कहा गया। भगवान अथ सुत गोस्वामी नैमिषारण्य वासी ऋषियों के निकट सुखदेव की जी का प्रसंग उठाकर, इसलिए सुखदेव गोस्वामी के लिए भगवत शब्द से संबोधन को, पहले तो भागवत प्रधान कहा, अब इसके बाद में भगवान कहा। इसलिए शास्त्रों का विरोधी ये नहीं है भगवान का कहना। हम लोग भी गुरु के लिए कभी भगवान कह सकते हैं, यदि गुरु ऐसे हैं तो व्यास जी के लिए, नारद जी के लिए, शंकर जी के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, हमारे महाप्रभु के गणों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाए। अब चलिए वैयासकी, यद्यपि हम लोग पहले कुछ अनुशीलन कर रहे हैं इसके संबंध में, आर्य सुखदेव गोस्वामी के संबंध में बतलाया। इसी श्लोक में सुखदेव गोस्वामी का नाम उल्लेख नहीं होने पर भी वैयासकी शब्द के द्वारा स्पष्ट किया है। वैष्णव प्रधान कहने से कोई भी हो सकता है वैसा यदि हो, और भगवान भी कहा जा सकता है, किंतु वैयासकी कहने से एकदम सुखदेव गोस्वामी का ही बोध होता है। इसलिए ये तीन विशेषणों में ये प्रधान है वैयासकी। व्यास में जो गुण है आपत्यवाचक है, ये शब्द आपत्यवाचक माने क्या, जैसे दासारथेय, दासारथी और ऐसे ही शब्द हो सकते हैं, भिगु से भार्गव इत्यादि होता है, उसी तरह से व्यास, व्यास वैयासकी, व्यास नंदन उनको बतलाया गया है। इसके द्वारा क्या बोध होता है, जिस प्रकार से व्यास जी ने अपनी प्रज्ञा के बल से, अपने भक्ति के बल से वेदों का जो कठिन विषय है विभाग किया, वेदों को जानना भी बड़ा भारी कठिन है, वेदों का तात्पर्य ब्रह्मा वेद प्रकाशित हुए ब्रह्मा जी से, और प्रकाशित किया किसने, नारायण ने, नारायण ने ही उनको कहा कि हमारे प्रभाव से ये तुम इन चीजों को ग्रहण करो। ज्ञान गदितम मया ज्ञानम परम गुह्यम जग विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगश्च ज्ञान गदितम। वेदों का तात्पर्य चार श्लोकों में उन्होंने श्रीमद्भागवत के रूप में उनको सुनाया, माने वेद ही सुनाया। किसने, ब्रह्मा जी को ये दिया, तेने ब्रह्म विदा कौन, भगवान उनको नारायण कहिए कृष्ण को। ये सुखदेव गोस्वामी व्यास जी स्वयं नारायण है, इसलिए नारायण में और ब्रह्मा जी में वेद का तात्पर्य कौन अधिक जानता है, वेद जिनके मुख से निकला और जिन्होंने प्रेरणा दी उसकी, दोनों में किस कौन अधिक समझेगा। इसलिए व्यास जी उनसे ब्रह्मा जी से भी अधिक समझते हैं, ये समझो। तो इसलिए इन्होंने चारों वेदों का विभाग किया, ब्रह्मा जी ने ही किया, विभाग करके तो फिर हो सकता है कि ब्रह्मा के चार मुख से एक एक वेद निकल रहा हो, किंतु ज्ञाता है कौन? ज्ञाता। इतना ही नहीं, उसको सरल सुबोध और एकत्र करके उन्होंने वेदांत सूत्र उन्होंने लिखा। इतना ही नहीं, वेदांत सूत्र की व्याख्या के रूप में श्रीमद् भागवत को दिया। इसका अतिरिक्त महाभारत और अवसर पुराणों को उन्होंने प्रकाशित किया। उसमें से समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत को और अधिक रूप में प्रकाशित किया। रासलीला इत्यादि का प्रकाश कौन किया? व्यास ने। और अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, मैंने दिया। इनका जितना जो कुछ ज्ञान भक्ति प्रेम जो कुछ था उसका उत्तराधिकारी ये सुखदेव गोस्वामी है, इसलिए इनको व्यास कहा। पुत्र ही पिता का अधिकारी होता है, तो शिष्य और पुत्र के दोनों रूप में ये उनके उत्तराधिकारी है। इसलिए व्यास जैसे गंभीर विचारक तत्ववादी इत्यादि थे, विशेष करके कृष्ण कथा बोलने के लिए वेदार्थ तत्व को जानने वाले और व्यास के तपस्या के फलस्वरूप इनका जो जन्म है, आज जन्म संसार वैरागी, कृष्ण के प्रति विशेष रूप से अनुरागी, सब समय कृष्ण की भक्ति में भाव में विभावी, ऐसे सुखदेव गोस्वामी के लिए ही वैयास की शब्द का प्रयोग हुआ है। यथार्थ उत्तराधिकारी हैं। इसलिए तीन विशेषणों को दिया। अब यहां पर सुत गोस्वामी ने सौनक आदि ऋषियों को बतलाया, विष्णुरातम विष्णुरात परीक्षित जी को कथा सुनाई। पहले उनको सुना, सुनकर के पुलकित हुए उन प्रश्नों को, और पुलकित होने के बाद में वो कथा सुनाने बैठे। उसके पहले की बात है, तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने साधु बात दिया, किनको? परीक्षित महाराज जी को साधु बात दिया। साधु बात मैंने क्या दिया? साधु साधु, ऐसा प्रश्न करने वाला यथार्थ साधु। और विशेष करके ये कहा भगवान की, अब वो क्या कहा वो आगे कहेंगे। तुमने सारी भगवत लीला कथाओं को जो परम रहस्यमय है हमारे हृदय में उदित कर दिया, हमको भी हमारे लिए भी स्मरण में वो सब चीजें आ गई, हमको भी पवित्र कर दिया। करेंगे विष्णुरात, विष्णुरात किसको कहते हैं? कहीं कहीं पर रात शब्द का पंच रात ज्ञान, विष्णु तत्व ज्ञान, विष्णुरात विष्णु का जो कुछ तत्व है, विष्णु शब्द से गर्भोदशाई से लेकर शेष से लेकर और कृष्ण तक भजन नंदन तक समझो, इनका तत्व ज्ञान प्रेमावक्ति इत्यादि सबको जानने वाले हैं, ये समझो विष्णुरात। और प्रथम स्कंद में ऐसा लिखा गया है, परीक्षित का जब जन्म हुआ, कब जन्म हुआ? अश्वस्थामा ने बाण मारे और वो बाण परीक्षित जी की मैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और बच्चे को जला डालने की चेष्टा, और उतने में उन्होंने कृष्ण को पुकारा, कुंती ने पुकारा और एकदम कपड़े जहां तहां छोड़ती हुई, अंचल कहां गिरा कहां, और कृष्ण के तरफ में दौड़ी उत्तरा, रक्षा कीजिए रक्षा। झट कृष्ण उसके भीतर में पहुंच करके पांच चक्रों, हाथ में चक्र और गदा लेकर उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया, इनको रक्षा। इसके बाद में इनका जन्म हुआ, जन्म होने पर ये सबको देख रही है, परीक्षा करे किसने हमारी रक्षा की, वही तो ये नहीं है, चारों तरफ में देख, जब तक नहीं देखा तब तक परीक्षा करता रहा, वही तो नहीं ऐसा ही तो वही तो नहीं, इसलिए उनका नाम परीक्षित। जिसने कृष्ण को देखा था कि हाँ वही, परीक्षा करके कृष्ण को स्थिर किया, जो हमारे हमको गर्भ में जो दर्शन दिए वही ये व्यक्ति, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। ऐसा इसके बाद में जब वो कुछ बड़ा हुआ, कृष्ण ने अपने आप उसको गोदी में खिलाया, आदर किया, जत्न किया, उसकी रक्षा की गई। जब कुछ और बड़े हो गए या उसी समय में रातो अनुग्रहाय विष्णुना प्रभ विष्णुना तस्मात् नामना विष्णु रात इति लोके भविष्यति, ये प्रथम स्कंद में ऐसा लिखा गया है। जिस समय वो पैदा हुए या कृष्ण ने ही उनकी रक्षा करके और पांडवों को दुर्दशा इत्यादि को अनुग्रह करके इनको उनके हाथों में दिया। रात मैंने होता है देना, प्रदान करना, तो यहां पर यही बतला रहे हैं। उसी में रातो अनुग्रहार्थाय, अनुग्रह करते हुए प्रभविष्मा विष्णु, सब प्रकार से जो प्रभावशाली हैं ऐसे जो विष्णु, ऐसे विष्णु ने तस्मान उन्होंने युधिष्ठिर इत्यादि को इस पुत्र को सौंप दिया, इस बच्चे को सौंपा, इसलिए तुम्हारे वंश का यह रक्षक होगा और विश्व में तुम्हारी कीर्ति फैलाएगा और ये भागवत प्रधान होगा, इसी से भागवत प्रकटित होगा। और ऐसे ही बात हुई, इसलिए अनुग्रहार्थाय पांडवों पर अनुग्रह करने के लिए, जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए किसके द्वारा, श्रीमद् भागवत को ये प्रकटित कराएगा। इसलिए जगत पर अनुग्रह करने के लिए, उन लोगों पर अनुग्रह कर उनके वंश में ऐसे परीक्षित महाराज जी को जन्म दे करके उनको सौंप दिया, इसकी रक्षा करो। तस्मात् नाम विष्णुरात इतलो, सर्वेश्वर श्री कृष्ण जगत के ऊपर कृपा होकर के इस बालक को तुमको दिया है, किसको, पांडवों को दिया है। अतः विष्णु कार्तिक रात्र, विष्णु के द्वारा रात्र अतत दिया, प्रदान किया गया, इसलिए प्रदान किया गया। इसलिए तीन प्रकार के अर्थ उन्होंने बतलाए, इसलिए उनका नाम विष्णु रात हुआ। विष्णु के द्वारा सौंपा जाना, दिया जाना, विष्णु रात माने विष्णु तत्व ज्ञान, कृष्ण तत्व के लिए सबके, और विष्णु रात, विष्णु रात माने और एक क्या बतलाए, विष्णु कार्तिक अरक्षित, और एक होगा रात माने ज्ञान, विष्णु के तत्व ज्ञान में जो पारंगत हैं, इसका तात्पर्य क्या, जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं इनसे कम नहीं, आगे ये बतलाएंगे इस चीज को। उनको मुनि सप्तम कहा किसने, परीक्षित महाराज ने, अयो ने कहा उनको राजर्षि सप्तम, आगे के श्लोक में आएगा राजर्षि सप्तम, हे राजर्षि सप्तम, उन्होंने कहा मुनि सप्तम। हम मुनि सप्तम और राजर्षि सप्तम में जब हम विचार करेंगे तो विचार करने में किसका श्रेष्ठ तत्व है, ये कुछ विचार योग्य है, हम लोग प्रसन्न पर इसको ले आएंगे। यदि परीक्षित महाराज जी का जन्म नहीं हुआ होता और ये सुखदेव गोस्वामी से ऐसे सुंदर प्रश्न नहीं करते तो श्रीमद् भागवत मुक्त ही रहता, प्रकाशित नहीं होता। इसलिए कृष्ण लीला कथा के प्रकाश के उपयुक्त ये पात्र हैं। ऐसे को कृष्ण ने रक्षा करके और पांडवों को सौंप दिया, जो विष्णु तत्व जो थे तीनों अर्थेत में आ गया। सुखदेव गोस्वामी ने साधु बात दे करके हरि कथा आरंभ किया। कैसी कथा, कली कलमशाघ्नम, कली कलमश घना, घना माने
हनन करना, दूर
करना,
कली के कलमश को दूर करने वाले।
कृष्ण नाम से समझ सकते हैं ये सब के चित्त को आकर्षण करने वाले हैं। तो इनकी लीला कथाएं कैसी होगी? आकर्षक होगी। किसी व्यक्ति में उतना गुण हो ना हो, किंतु उसकी बात को हम लोग यदि दलाल कोई रहे ना, तो उस चीज का जिसको बेचना है उस चीज की महत्ता, वाह वाह बैगन बैगन जफात में विशेष गुण है उसमें, इसलिए बैगन कहलाता है। महाराज आपने ठीक ही कहा, बैगन बहुत सबसे सुंदर सब्जियों में सबसे श्रेष्ठ है। उसको लकड़ा में दीजिए, दाल में सिद्ध दीजिए, चोखा बनाइए, भत्ता बनाइए, वो क्या कहते हैं भाजा बनाइए, कोफ्ता बनाइए, और जो कुछ इच्छा हो सब में उसको दे दीजिए, कितना गुण ही गुण है, इसलिए विशेष गुण है महाराज। अच्छा, और जब कह दे नहीं इसमें कोई गुण है, तब गुण नहीं है, सचमुच में ये बेगुण बिना गुण बेकार का ये सब रोगों का घर है। बैगन खाने से ही खुजली होगी और होगा। कह दिया ऐसा क्यों कहा तुमने? तो महाराज मैं बैगन का नौकर नहीं हूं, आपका नौकर हूं, आप जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा ही। यहां पर कह रहे हैं कृष्ण आकर्षक। एक आदमी मान लिया कि जैसे काला सा है ना, काला है, पैर भी टेढ़ा है और भी क्रूर है। अब कोई दलाल है वो कह रहा है कि अरे आप सांवला सा है, कोई खराब नहीं लड़का है, सांवला है, मुख पर बहुत सुंदर पानी है, सांवला लड़की भी कृष्ण सांवला नहीं हुए, अरे उस बड़ा गुण है, बड़ा सचित्र है, गुणवान है, वैसा भी है, ये कह करके पुल बांध की तारीफ की, और अब व्यक्ति वैसा नहीं। ये कथा उस व्यक्ति से भी अधिक बढ़ा देती है या उसका आकर्षण बढ़ा देती है। तो कहते हैं कि कृष्ण तो सचमुच में सचिनानंद घन विग्रह परम आनंदमय सब आकर्षक है, उनकी लीला कथाएं और भी आकर्षित। कोई भी कृष्ण के तरफ में आकर्षित होता है उनका रूप देख करके नहीं, बल्कि उनका रूप गुण नाम लीला ये सब सुन करके हर उन साधक लोग भी उनके तरफ में आकर्षित होते हैं। इसलिए लीला कथाओं को कथाओं से सुनने से ही भक्ति होती है, इसलिए भक्ति की जननी ये कथा है, इसलिए सबसे पहले श्रवण। इसलिए भगवान की लीला कथाएं जो हैं वो भी सर्वचित आकर्षक परमानंद घन विग्रह है वो कथा है, किंतु हम लोग अयोग्य होने के कारण इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ऐसी वो कथाएं हैं, हृदय का जो रोग है सबसे बड़ा अविद्या भव रोग और विषयों के प्रति आसक्ति काम, ये कैसे दूर होगा? अभी अविच्छेद्य संबंध है हमारा उन काम के साथ ही, किंतु लीला कथाएं जितनी अधिक होती जाएंगी, जितना श्रवण करता जाएगा उतना ही अधिक रूप में उसका काम रोग और किसी तरह से नहीं जाएगा, काम क्रोध लोभ मद मोह ऐसे नहीं जाएंगे, जितना ही हरि कथा अधिक होगी उसको धारण करता जाएगा, वो अपने आप जबरदस्ती उन काम क्रोध लोभ मोह का स्थान ये लेती जाएगी और उनको खदेड़ती जाएगी, अंत में सब प्रकार से उसको दूर कर देगी। ये हरि कथा की ऐसी ऐसा उनका प्रभाव है। विशेष करके इस श्लोक में कहा गया है कली कलमशम न, कली के कलमश को दूर करने वाले ये लीला कथा है। कली कलमश अग्नम मैंने इसके कुछ अर्थ निकलते हैं, कलौ जन कलमशम तम हंती, कलों के जो कलमश है, कली के कलमश क्या है? कली के कलमश अभी देख रहे हैं ना, कैसा तरह तरह में कली संदेह विवाद सब ला करके परस्पर परस्पर को दूर कर देता, अलग अलग कर देता है, कलम कलहम लाती कलह लाती, अनावश्यक रूप में सबसे कलह कर देता है, ऐसा संदेह उत्पन्न करता है जो परस्पर में वो इतनी नहीं लाती, इसको हंती उसको दूर करने वाले स्वभावतः जीव पापाशक्त होता है। हम साथी जैसे बैठे हुए यहाँ पर हैं, भीतर में ना जाने कौन कौन से पाप भीतर में है, थोड़ा सा कहीं उद्दीपना आने पर हम न क्या कर देते हैं। कृष्ण चरित्र स्वादन से ये सब पाप दूर हो जाते हैं। अथवा कली रूपम जब कलमशम तम भंती, कली स्वयं ही कलमश है, कली
कलमश है,
इसको नाश किसने किया? परीक्षित महाराज ने उसको दमन कर दिया। कली स्वयं हम लोगों में प्रवेश कर जाता है, पहले विषयी लोगों ने किया, विषयी लोगों से धीरे धीरे जो भी तपस्वी ज्ञानी गया और युगों में गया वहां, और फिर कली युग में ये साधु संतों में भी इन लोगों में भी दो आदमी एक साथ में नहीं रह सकते, सब में कलह ला रहे, उसको ये स्वयं हरि कथा उनको दमन करती है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कली के पाप इत्यादि को सबको हरि कथा के माध्यम से सबको शांत कर, इसलिए पाप मुक्ति है। अथवा कली, कली शब्द का अर्थ है कला, कला माने क्या, और तो कला है ही है, कली में सबसे बड़ा कला है हमारा साधन क्या है, साध्य क्या है, सब देवता देवियों का पूजा करें उससे मिल जाएगा, धन मिल जाएगा और सब चीज मिलेगी, हमारा उपास्य क्या है, उपासना क्या है, इसलिए साध्य और साधन के संबंध में तरह तरह से अनुदेहात्मक संकल्प विकल्पात्मक विचार, ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम किसी विषय में हमारी निष्ठा नहीं, इसको ये दूर करने वाले कौन,
हरि कथा दूर करने वाली है।
यदि कोई कुछ नहीं जानता है, सनातन गोस्वामी जानिए साध्य साधन कुछ नहीं जानी, कुछ भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं जानी, आप कृपा करके बतला, हमारे रघुनाथ भट्ट के गोस्वामी के पिता तपन मिश्र महाप्रभु जी से बोले दक्षिण पूरा कोई बंग में जाते सकते, साधन साधन इत्यादि में कुछ नहीं जानता, भजन कुछ नहीं जानता, आप कृपा करके बताएगा, जब समय आने पर बतलाऊंगा, अभी जाओ हरि नाम करना और मैं वाराणसी आने पर बतलाऊंगा। तो उन्होंने हरि कथा सुना, जिसमें सनातन गोस्वामी को कथा सुना रहे हैं तो उसमें तो होंगे कि नहीं है, वो पूरे सुने और उनका सब कुछ संबोधित हो गया। अतः कृष्ण चरित्र कैसा है, कली कलश, कली कलमश दूर करने वाला है, इसलिए विष्णु राग शब्द का व्यवहार ये किया जाता है, विष्णु राग का विशेषण बनाओ, ये हरि कथा का विशेषण अभी बतलाया, कली कलमश शब्दम, हरि कथा कैसी है ऐसी, और फिर इसको यदि न दे करके ये बतलाया जाए कली कलमश शब्दम विष्णु रात को कहा, आया समझ में, विष्णु रात का विशेषण लाना उसको, अभी तक तो हरि कथा का विशेषण यह शब्द था, अब कलमशन ये विष्णु रात का बतलाओ उनका विशेषण, तब क्या अर्थ होगा, ये कली के कलमशों को दूर करने वाले हैं, दूर किया था आपने धनुष बाण के द्वारा, उसको दमन किया था और एक किसी विषय में रहने के लिए उसको बाध्य किया, और जब तक वो जीवित रहे कली का दोष जगत में नहीं रहा, सबसे दूर रहा, इसलिए ऐसे दूर करने वाले कली, कली काल के दुखों को कष्टों को और कलमशों को दूर करने वाले, दोषों को दूर करने वाले परीक्षित महाराज जी के निकट इन सब कथाओं को बोलना आरंभ किया। अब आप श्लोक आज यही तक पंचा कल्प करो बोलो पंद्रह श्लोक ओम समुगुनंदन साधु बाधन श्लोक की व्याख्या, उसमें संतोष स्थान में गोस्वामी ने या परीक्षित महाराज ने उनको वैयासकी भगवान और भागवत प्रधान बतला करके बहुत सी उद्दीपनाओं को उनके हृदय में उद्दीपनाएं हुई और उन्होंने प्रत्यक्ष विष्णु राधन परीक्षित महाराज की प्रति अर्चना अर्थात उन्होंने जैसे अर्चन की उन्होंने भी वैसे और उनको कथा कहने के लिए उनके हृदय में लालसा जगाई। इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी ने सुन करके जैसे परीक्षित ने किया था सुखदेव गोस्वामी की बात है संलग्नवसितो बुद्धिस्तो राजर्षितम राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते जज्ञाता नैष्ठिकीं रति वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्तेन पुनातिहि वक्तारं प्रक्षपं सोक्तं तत्पादशैलं यथा। साधारण इसका तात्पर्य है सुखदेव गोस्वामी जी बोले सम्यक दर्शन स्तव राजन हे राजस्व सप्तम राजस्वों में उत्तम श्रेष्ठ आपकी बुद्धि या आपके हृदय में निष्ठ की रति उत्पन्न हो गई। एक निष्ठा उत्पन्न होता है और एक निष्ठ की रति होती है, दोनों में अंतर है। निष्ठा होता है अनर्थ वृत्ति के बाद में बुद्धि पूर्वक जब हम स्थिर करते हैं कोई बात जो कृष्ण का भजन कर लिया तो ये हुई निष्ठा और नैष्ठिक की उस नष्ठा से उत्पन्न हुई जो रति है रति माने भाव ये अलग है वो दोनों एक है। फिर राजन आपकी वासुदेव कथाया वासुदेव की कथा में भगवान कृष्ण की कथा में आपकी नैष्ठिक की रति है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आपने भोजन और पानी दोनों बंद कर दिया। आप कथा के समय चित्त आपका कहीं नहीं जाता एकदम स्थिर होकर के मानो उसको पी रहे हैं। थोड़ी सी कथा बंद होने पर आपके प्राण मानो चले जाते हैं इसलिए आपके अंदर में निष्ठ की गति उत्पन्न नहीं है। विशेष करके सम्यक भविष्य सम्यक रूप से व्यवस्थित आपकी बुद्धि है। हे राजन वासुदेव कथा के लिए जो प्रश्न है वो पुरुषांश तीन पुनाति जो कथा का प्रश्न करता है कथा के लिए प्रश्न करता है महाराज आप कृष्ण की लीला कथाओं को करें उन्होंने क्या क्या लीला है भगवत संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो तीन पुरुषों को पवित्र कर देता है। कौन तीन पुरुष जो प्रश्न करता है जो उत्तर देता है और जो सुनता है ये तीन पुरुष श्रोता वक्ता प्रश्न करता तीन पुरुष। जैसे पाद शरीरम तथा आपके चरण कमलों की जैसे चरणामृत है अथवा आपके चरणों से निकली हुई गंगा जैसे गंगा ऊपर नीचे और इस पृथ्वी तीनों लोगों को पवित्र कर देता है अथवा जिन्होंने लाया लाया किसने जिन लोगों ने प्रेरणा दी गाने की सदा महाराज इत्यादि और जिनको उनसे संपर्क कराया जगत के लोग और जिनको पानी स्पर्श हुआ सभी वैकुंठ चले। अथवा पाद सलिलम यथा सालग्राम की जो सेवा की जाती है तो जो पानी लाया है गंगा जमुना का या कोई पवित्र पानी और किसी ने उसको स्नान कराया और किन्हीं ने उनका पानी चरणों तक लिया। जो पानी लाया जिसने ठाकुर जी के स्नान कराया और जो जो उस पानी को ग्रहण किया वो सभी लोग पवित्र बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही ये कथाएं आपको प्रश्नकर्ता की वजह से वो आई हरि कथा, जिन्होंने कहा वो हुआ और उसको जो सुना हो तीनों पुरुषों को उद्धार करते। सनातन गोस्वामी की विशेष इसमें टीका है, श्रोता और वक्ता समजातीय होना चाहिए तब उस कथा में रस आता है। यदि श्रोता उत्तम कोटि का हो वक्ता और श्रोता निम्न कोटि का हो तो उसमें रसास्वादन नहीं होगा, उसकी बात को नहीं समझ सकेगा, उल्टा ग्रहण कर लेगा। अथवा वक्ता हुआ उच्च कनिष्ठ हुआ और श्रोता हुआ उत्तम तो उसको अच्छा नहीं लगा, रुचकर नहीं तो उठ करके चला जाएगा। और यदि मान लिया कि रुचकर नहीं हुआ उसको और न भी चला गया तो वो ठीक से उसमें कोई प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आनंद ही नहीं आता, भूल कथाएं नहीं होंगी। इसलिए श्रोता और वक्ता दोनों का समजातीय एक समान प्रदूषण होनी चाहिए। अधिकार यदि ऐसा हो तो बहुत ही सुंदर है, तब कुछ रसाव कथाओं के में रुचि आएगी। जैसे महाप्रभु थे साढ़े तीन आदमियों को लेकर के ही गंभीरा में बात प्राप्त हो, विशेष करके दो सर्वानुगत
महावदन्नाय कृष्णाय कृष्णनम गौरवे हे कृष्ण कर्णा सिंधो भगवते बताया था
विराजमान थे, और उसके बाद में कितना 40 वर्ष या कितने वर्ष के बाद में कुछ समय बताया है, 30 वर्ष या कितना निशारण में समापादी ऋषियों को सुख गोस्वामी ने ब्रह्मासन सूत्र में उग्र सुवासिनी सिद्धि ने ये कथा का वर्णन किया है। तो सुख गोस्वामी ये बलदेव जी के पिता पात्र हैं, उन्होंने सब हरि कथा भागवत इत्यादि की स्तुति कराई और उस पर ही उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के यहाँ से भागवत का श्रवण किया, इसलिए परम तत्पक्व और रसिक है। उस समय में परीक्षित महाराज जी की राजसभा में श्री कृष्ण के लीला श्रवण में उत्सुक होकर के परीक्षित महाराज जी ने जो प्रश्न किया था, सुख गोस्वामी ने सौनक आदि सभा में वो सब प्रश्नों का वर्णन किया गया, हमारे सामने में ये प्रश्न सब किए गए थे, इसका कम हमने वर्णन किया था। ये सौनक उस समय में वो सभी भावाविष्ट होकर के सुन रहे, सुनना भी बहुत प्रकार का बतलाया गया, तामसिक श्रवण, राजसिक श्रवण, सात्विक श्रवण, निर्गुण श्रवण और भाव के श्रवण, ये जिसमें कि तामसिक व्यक्ति इसको श्रवण करता है ये तामसिक, धन संपत्ति इत्यादि के लिए जो भूत पिशाच दूर करने के लिए ये सब कथा सुनते सुनाते हैं ये लोग वक्ता और श्रोता दोनों ही तामसिक हैं, जो धन संपत्ति वृद्धि के लिए पुण्य करने के लिए और उद्धार करने के लिए किसी का ये जो बात करते हैं तो ये सब राजसिक है, और जब आत्मकल्याण के लिए सुनते हैं तो ये सात्विक है, उसमें भी कुछ लालसा बनी रहती है सात्विक में, और निर्गुण है अद्वैतवादी इत्यादि यदि सांसारिक आसक्ति सुनते हैं छोड़ करके और ये सुने सुनते हैं इसलिए कि चित्त की शुद्धि और कुछ नहीं, तो ये सब भी कुछ शुद्ध नहीं है, क्योंकि जो लोग साधारण रूप में सुनते हैं कि भगवान की भक्ति हो इसको निर्गुण कह सकते हैं, आप जो भाव के साथ में सुनते हैं सुनते ही जैसे बतलाया गया हंस चक्रवात और एक और ऐसे श्रोता हूं, यहां पर करें भावाविष्ट होकर के ये सुन रहे हैं भगवान की लीला कथाओं को, ये करें यदि आप लोग इस प्रश्नों को सुनकर के इस प्रकार से विभावित हो रहे हैं सोच रहे हैं ये सुख गोस्वामी जी तो हरि कथा का जब कहेंगे सुखदेव गोस्वामी की जो कही हुई बातों को कृष्ण लीला का तत्व सुनाऊंगा तो इनकी क्या स्थिति हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बतलाया था भृगुनंदन एवं निशम भृगुनंदन साधुवाद है, भृगुनंदन भूमि जी के पुत्र हैं इसलिए आपको इस प्रकार से हरिदास कथा में आस्वादन तुम्हारा दे करके मैं विस्मित हो रहा हूं, यदि साधक श्रोता किसी को ऐसा देखे वक्ता श्रोता का ऐसा देखे तो उसको उत्साह होता है, इसलिए ऐसे श्रोता को पाकर के उनको बहुत ही आनंद है और हरि कथा भी उसी प्रकार से कहने लगते हैं। भृगुनंदन तुम्हारे पिताजी तो भक्ति से भरे हुए थे और भगवान को ये निर्धारित किया कि ये कृष्ण ही या नारायण ही विष्णु ही सबके आराध्य ब्रह्मा और शंकर इत्यादि नहीं, ये आपने निर्णय किया था,
इसलिए आप लोगों में भी ये भक्ति उनसे जरूर आई है, नहीं तो आप लोग इतना इस भाव से नहीं सुन सकते थे। आज भी भगवान विष्णु भृगुलांछन को अभी भी ग्रहण करते हैं, उनके चरणों का चिन्ह दक्षिण रोमावली के रूप में, लक्ष्मी के निवास के रूप में ये ग्रहण करते हैं। सुख गोस्वामी जी नैमिषारण्य वासी ऋषियों को उन्होंने बताया है, ऋषियों ये सुखदेव गोस्वामी कैसे थे, परीक्षित महाराज उनको तीन विशेषण दे रहे हैं, भागवत प्रधान भगवान वैयासकी, एक हुआ भागवत प्रधान, एक वैयासकी और एक भगवान, ये तीन उनको संबोधन दे रहे हैं। अभी हम लोग पहले भागवत प्रधान किसको कहते हैं ये विचार करेंगे। श्रीमद् भागवत में भागवत प्रधान का लक्षण दिया गया है, चैतन्य चैतामृत में भी भागवत का लक्षण दिया गया है, श्रद्धा के अनुसार में वैष्णव भी उत्तम मध्यम उसमें बतलाया गया है, जिनके देखने से कृष्ण प्रेम आए, नाम की तो बात ही क्या, कृष्ण कृष्ण अपने आप जिनके देखने मात्र से ही और जिनके देखने मात्र से ही कृष्ण प्रेम प्रकट होने लगे, वो है उत्तम महाभागवत वैष्णव प्रधान। जिसक्यों एक भागवत है भक्ति रस पात्र, आर भागवत है भक्ति रस पात्र, एक तो है भक्ति रस का शास्त्र है, भक्ति रस शास्त्र ये श्रीमद् भागवत जो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो वर्णित किया गया ये भक्ति रस शास्त्र है, और दूसरा है कौन, भक्ति रस का जो पात्र है, पात्र कौन है, उत्तम महाभागवत जो है। इसी श्लोक में जो भागवत प्रधान जो कहा गया है, भागवत प्रधान एक तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में पारंगत होना चाहिए, उस रस में रसिक होना चाहिए, और भक्ति रस का पात्र भी स्वयं हो, दोनों बात, ये दोनों बातें सुखदेव गोस्वामी हैं। ये भक्ति रस का जो शास्त्र है उसमें ये प्रधान है, कौन उनको जानने वालों में परीक्षित महाराज के लिए नहीं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी का भक्ति रस शास्त्र में जो कुछ है उस सब विषयों में उसका रस पान करके ये रसिक है, उसको सब कुछ जानने वाले, और भक्ति रस के तो पात्र ही है, दोनों बातें हैं। परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी में ये दोनों चीजें, भक्ति रस शास्त्र भागवत में भी प्रधान है और साथ साथ उसको आस्वादक भी है, पात्र भी है, भक्ति के पात्र, भक्ति रस के पात्र है। सुखदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र में देखा जाता है, भागवत में तो नहीं, भागवत में तो ये देखा गया, जन्म से ही परम विरक्त और वो वन में चले गए, वैराग्य की अंतिम निधि उनके साथ में, और इसके बाद में सुखदेव व्यास जी ने उनको किसी प्रकार से आकर्षण करके उनको भागवत शास्त्र पढ़ाया। नैर्गुण्य निष्ठ को परिनिष्ठ हो, नैर्गुण्य में परिनिष्ठित है, परिनिष्ठित माने नैर्गुण्य है कृष्ण निर्गुण, उनके परिनिष्ठित है, उनकी भक्ति में परिनिष्ठित है, और वैराग्यवान है परम सुखदेव गोस्वामी। किंतु पुराणों को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि वो जनक के दरबार में गए थे, व्यास जी ने उनको भेजा और वहां जाकर तो उनको सात देवियों में उनकी परीक्षा ली गई और सातों में वो पास रहे, बिना अपमान युक्त रहकर के प्रथम देवरी में उनको ऐसे ठहरा दिया, सात दिन तक वैसे पड़े रहे, किंतु वहां से हटे नहीं। इसके बाद में उनको भीतर में प्रवेश दिया गया बड़े आदर जत्न के साथ में, सम्मान के साथ में, फूल का माला डाला देकर। तीसरी जोड़ी में सब तरुणी स्त्रियां उनको चारों तरफ से घेर करके और वहां के अंतःपुर को दिखला रही, छोटी छोटी लड़कियां उनका स्वागत सत्कार कीर्तन करते हुए अनुभव भी करती हुई उनको अशुद्ध गोस्वामी नंदे। इसके बाद में दो तीन दिन वहां पर रुक दिया। इसके बाद में फिर ऐसे करते 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 सातवें जोड़ी में राज दरबार में वहां पर अंतिम परीक्षा हुई। नारद ऋषि पहले से बैठे हैं और महाराज जनक जी उनके चरणों के नीचे बैठे हैं। जब ही ये पहुंचे उनको सिंहासन पर बैठा दिया, एक तरफ में नारद और दूसरे तरफ में ये। और बैठाने के बाद में अपनी पत्नी सुनैना जी को सीता जी की मैया को लेकर के बैठा दिया, 16 श्रृंगार 32 आवरण करके बैठा। नारद जी उनको प्रणाम करके पीछे बैठे हट गए और वो जैसे तैसे बैठे। परीक्षा होने के बाद में तब उन्होंने ज्ञान की बातें इनको सिखलाई सुखदेव राजा जी। तो दोनों को यदि मिला दिया जाए तो कुछ संशय होता है, ये कब की बात है। वो सुखदेव गोस्वामी जन्म के साथ ही साथ में गए और सुखदेव गोस्वामी ने उनको भागवत पढ़ाया, इसके बाद में उनको भेजा ना उसके पहले भेजा, तो कब भेजा, क्योंकि वो जंगल में चले गए तो ये हाथ उत्तर करते हुए भगव होता है और दहेलियों को मंत्र दिया और उस मंत्र में ओ वकीयम इत्यादि या बड़ा पीड़म नटवर श्लोक दिया और उनको आकर्षण कर दिया। तो जनकपुर में गए होंगे तो पैदल गए, कहां ये कहां वो सुखदेव गोस्वामी और वहां थे बद्रिकाश्रम में और वहां से जनकपुर थोड़ी दूर नहीं है और वहां से आते जाते ये तो परमहंस आदमी है तो कुछ वर्ष एक वर्ष लग गया होगा आने जाने और सुनने समझने में या 6 महीना लग गया होगा तो ऐसा तो मालूम नहीं होता। विशेष करके सुखदेव गोस्वामी जनक जी का समय कब है, 24वें चतुर्युगी, 24वां चतुर्युगी में रामचंद्र जी आए, उस समय राजा जनक थे। त्रेता युग और भी इस त्रेता युग में नहीं, 24वें चतुर्युग 28वें ये कौन सा ये है मनमंत्र 28 का है और 28वें मनमंत्र का ये कौन सा चतुर्युग है, सप्तम मनमंत्र है, ये सप्तम मनमंत्र का ये 28वां चतुर्युगी के अंतर्गत में अभी कलयुग है, इसके पहले द्वापर था। तो इसमें आए कृष्णचंद्र, इनके समय में सुखदेव गोस्वामी इनके बाद में हुए। जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तब सुखदेव की कथा आती है। तो इसका मतलब हुआ कि 28वें चतुर्युगी में नहीं, सप्तम मनमंत्र के 28वें चतुर्युगी में ये सुखदेव गोस्वामी जी से ये श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है। और वो जो बात है वो कब है, 24वां चार मनमंत्र पहले, चार चतुर्युगी पहले। तो चार चतुर्युगी माने होता है एक एक में 4,16,00,000 वर्ष यह होता है एक चतुर्युगी में। और बतलाओ चार चतुर्युगी में कितना हो गया, कितना अंतर,
16 करोड़
इतना करोड़ वर्ष, इसलिए दोनों एक व्यक्ति है कि नहीं इसमें संदेह नहीं है। इसलिए बहुत से सूत्रों का वर्णन है और यदि होगा तो फिर ये दूसरे कल्प की लीला है, इस कल्प की बात नहीं ये दूसरे या बहुत दिनों की बात है। उस समय सुख नाम के बहुत से आदमी होते, अभी छाया सुख लीला सूत्र, असल सूत्र
बहुत से हैं,
तादाद सूत्र का वर्णन है।
इसलिए दोनों का सामंजस्य ठीक नहीं बैठता। जिस तरह से प्रबोधानंद और प्रकाशानंद सरस्वती एक नहीं है, क्योंकि उनकी रसिक कविताएं हैं, राधा कृष्ण परक हैं, वो मायावादी, प्रकाशानंद सरस्वती में ये संभव फर्क है, ये इतना रसिक हो जाएंगे। इसलिए यहां पर कह रहे हैं ये या तो कल्पांतर की बात है और नहीं तो चतुर्युगी, तो चार युग चतुर्युगी कितने करोड़ 16 करोड़ वर्ष हो जाता है, तो ये सुखदेव ये सुखदेव, इसलिए बहुत समय का अंतर है। इसलिए ये रसिक चूड़ामणि जो सूत्र है वैयासति, ये जो है भागवत प्रधान, ये भागवत प्रधान है पहले से ही, और वो यदि जिनको मान लिए जो वहां पर गए थे जनक जी के यहां, वो ज्ञान प्रधान भागवत प्रधान है, ये तात्पर्य इसका कारण है। वो ज्ञानी भक्त थे और ये है 16 आना उत्तम महाभागवत कृष्ण रस रसी, ज्ञानी व्यक्ति के लिए संपूर्ण उपन्यास। हाँ, ये बात ठीक है, जन्म से ही अथवा वही सुख गोस्वामी जी आ गए हो इस समय, पहले ज्ञानी प्रधान थे, अब सुखदेव गोस्वामी के यहाँ आ गए, व्यास जी के यहाँ आ गए उसके घर में, और बचपन से उनको 16 वर्ष तक की भागवत कथा सुनाई और इसके बाद में भी सुनाई, इसलिए इस तरह से सामंजस्य, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमारे जी गोस्वामी ने इस चीज को ग्रहण किया, ये दोनों को यदि एक मान लेते हैं तो कुछ असुविधा हो सकती है, इसलिए दोनों को एक नहीं मान करके कल्पांतर अथवा जन्मांतर इस प्रकार से लेकर के सामंजस्य किया। इसलिए ये बचपन से ही महाभागवत है। ये कौन है? राधा जी के श्री सुक, श्रीया सुक, श्री माने क्या, श्री शब्द का षष्ठी में श्री श्रीया दोनों होता है, श्रीया माने श्री जी का, इसलिए उनका ये सुख है, इसलिए ये महाभागवत प्रधान, इसलिए इनको भागवत प्रधान कहा है। इसलिए इनको देखने से जो कोई देखेगा क्या होगा, कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम उनको आ जाएगा। भागवत में बतलाया है, श्रीमद भागवत में भागवत का लक्षण एकादश स्कंध में बतलाया है, नेमी और संवाद में 20 सृजति हृदय जस्य साक्षात हरि अवसार हितो प्रणय रसनयादी पदमा सभवती भागवत प्रधान, ऐसा कहा। महाभागवत का लक्षण क्या है? प्रधान भक्तों में जो है भागवत प्रधान का लक्षण क्या, विसृजति हृदय न जस्य साक्षात हरि अवसाही हितो अप्रभव घनाश, एक मिनट के लिए भी जिनके हृदय से समस्त अहम का दूर करने वाले जो कृष्ण हैं वो कभी भी नहीं दूर होते, अगर सब समय उनकी स्मृति में वो विभावित रहते हैं, एक मुहूर्त के लिए एक सेकंड के लिए भी उनके हृदय से प्रभु कहीं नहीं दूर होते, अतः कभी भी उनकी विस्मृति नहीं होती। हम लोग इतना चेष्टा करते हैं मंत्र जपने के लिए भी नहीं ठीक से हो पाता, हरिनाम करते समय चेष्टा करते हैं, साधु सेवा के लिए चेष्टा करते हैं, कृष्ण की स्मृति कथाओं की स्मृति के लिए कितना चेष्टा करते हैं, किंतु प्राचीन संस्कार वर्तमान संस्कार वर्तमान कार्य और तरह तरह के ये सब चीजें हम लोगों को भुला देती है। अभी कृष्ण का स्मरण तक चित्त चला जा रहा था, इधर चला जाए, यदि शरीर में रोग है तो कोई बात नहीं, भोग है तो कोई बात ही नहीं, काम क्रोध है तो कोई बात नहीं, मिनट मिनट में दूर हो जाए यदि चित्त को मिला, और विसृजति हृदय न जस साक्षात, मानो साक्षात उनके हृदय में विराजमान कौन, भई अवसा अभिहितो अपि अगौघनाश। अग के नाश करने वाले बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ उसके घर झड़े में पधारे। ये कौन है? ऊपर से अगासुर का विनाश करने वाले ये बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। ये अपसुक कभी भी भूल से एक मिनट के लिए जिनके हृदय से बाहर नहीं जाते। क्यों? प्रणय रोशन या द्वितांति पद्म। ये लोग अपनी प्रणय रूपी रसना से डोरी से प्रणय की डोरी से जिनके चरण कमलों को बांध रखा है ये जाएंगे कैसे? जा ही नहीं सकते। चरण कमलों को उन्होंने प्रणय की रसना, प्रणय रसना माने क्या? प्रेम स्नेह मान प्रणय प्रणय की उस प्रणय की रसना से उन्होंने बांध रखा है। इन्हें कैसे जाएंगे? इसलिए इनको कहा गया भाग। दिन रात उसी की चिंता करते हुए कृष्ण के प्रति ऐसे ही उनके चरण बंधे हुए कहीं नहीं जा सकते। ये लोग हैं भागवत प्रधान। इनका यदि किसी का संग हो जाए ना तो उनका गुण जरूर दूसरे में प्रभावित हो जाएगा। इसलिए वो लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं। यदि एक बाबला का वृक्ष, बबुल का वृक्ष, चंदन के वृक्ष के थोड़ा सा दूर पर ही रहे तो वो भी चंदन बन जाता है खुशबू से। एक तलवार है या कोई अस्त्र है उसे चंदन को काटो तो इस लोहे में भी उसका सुगंध आ जाता है। तो और की तो बात क्या। इसलिए भक्तों का जब किसी से संपर्क हो तो उनके भाव उनमें संक्रमित नहीं होंगे। इसलिए उनको दर्शन मात्र से ही कृष्ण प्रेम होता है। भागवतों के लिए कहा गया कि देखे ना देखे तार मूर्ति,
स्थावर
जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्प्रेतार इष्ट देव। ये है भागवत प्रधान का लक्षण। श्रीमद् भागवत में बहुत से श्लोक बताए हैं भागवत प्रधान के लिए। हमने एक बार सबको याद करवाया था, हमको भी याद था कि क्रम से वो सब हो गया। पहले ये भागवत का क्लास, जैव धर्म का क्लास, गीता का क्लास, इन सबका श्लोकों को याद कराने का क्लास हुआ करता था। अब मुझे समय नहीं मिलता, शरीर भी स्वस्थ है, आप लोग समझ करके इस सब चीज का अनुशीलन कीजिए। इसे भक्ति में निष्ठा बढ़ती है, सिद्धांत का भी ज्ञान होता है, उसे परिपक्वता होती है। सुखदेव गोस्वामी परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी ने भागवत प्रधान और भागवत में लिखे हुए लक्षणों के अनुसार में परम भागवत था, भागवत प्रधान है। और यही कारण था कि व्यास जी ने इनको गति पर बैठा करके, व्यास गति पर बैठा करके हरि कथा में से कहा है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि नाना प्रकार के वासनाओं से विशेष हम लोगों में क्या है? यही भुक्ति मुक्ति सिद्धि तरह तरह की वासना है। यदि चप्पल हमारा खो गया तो दिन रात चप्पल की चिंता होगी, भगवान की चिंता नहीं होगी। चप्पल खो गया, चप्पल खो गया। यदि और कुछ हो गया इधर उधर, कमलिया यदि चली गई, कमलिया लंगोटी इधर चली गई, दिन रात कमली कमली कमली, कुछ भी इधर उधर हो गया, देखो जैसे क्या है। इसलिए भोगों का छोड़ना सहज नहीं है, कहना एक है सोना। इसलिए भोग छोड़ देंगे जब समय आएगा तो वो ठीक वो मालूम हो जाएगा कहां हमारा चित्त है। मुक्ति कोई भी कष्ट हो, थोड़े से आंख में दर्द होने लगे, शरीर में दर्द होने लगे, थोड़ा सा गठियाबाई हो जाए, कोई भी कुछ हो जाए तो क्या होगा? डॉक्टर है, वैद्य है, इधर से है, उधर से है, योग है, तस्य साधन को तो फिर दूर करने की चेष्टा करें। सिद्धि, भगवान ने सिद्धि नहीं दिया ले तो सिद्धि अभी हो जाने, तो हम तो सिद्धि सबसे पहले ले। बस चुटकी बजाया और ये चीज आ गई। किसी को कहे तुम्हारा रोग दूर हो जाए, इसे होगा क्या? जो कहेंगे सब हमारा हो जाएगा, और जिनसे जो कहेंगे कि भैया 1,00,000 रुपया दे दो तुम्हारा, क्या करेगा? बढ़ते 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 विलास में फंस कर ले मरेगा। तो ये कर्मी है, इसका बाद में ज्ञानी योगी प्रभृति उस सभा में उपस्थित है। कहां? जहां पर कि सुखदेव गोस्वामी जी कथा बोल रहे हैं। अधिकांश हम जो ज्ञानी मुक्ति चाहने वाले और कर्मी भोगी सभी उसमें उपस्थित हुए हैं। महाराज परीक्षित परम गोपनीय कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जब उनके लिए बात कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं परीक्षित की सभा में, उसके पहले कृष्ण की कथा कहीं नहीं हुई थी, हुई थी पद्म पुराण इत्यादि में जो कुछ उल्लेख हुआ होगा वही सब लोगों के संबंध में जानते हैं, किंतु इतने व्यापक रूप में जो आज हम भागवत के माध्यम से जान रहे हैं इसका प्रचार एकदम नहीं था। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये भी नहीं था, उसे नारायणी स्वयं भगवान है और उससे उनके ये अवतारों में ये परिगणित होकर के थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। उसमें भी कंस को मारा, चारुण को मारा, ये तो आप आओगे महाभारत युद्ध में वो कृष्ण ने ऐसा किया था, क्योंकि महाभारत पहले हुआ है। और सब लीलाएं हुई, किंतु उन्होंने जसोदा जी का स्तन किया, जसोदा जी ने अपने प्रेम से इनको बांध दिया और कृष्णस्तु भगवान स्वयं और मुहु रहो रसिका भूल भाविका, ये सब चीजें कृष्ण किया। रासलीला और सब जो लीलाएं उद्धव संदेश है ये सब नहीं किया, एकदम आवृत था ये सब। ये सुखदेव गोस्वामी के परीक्षित संवाद के बाद से ये प्रकाश हुआ। तो जिसमें ये लोग सब थे योगी कर्मी ज्ञानी, और उसमें ऐसे कृष्ण संबंधी उन्होंने प्रश्न किया, वहां पर कुछ लोग थे नित्य परिषद भी थे, जैसे कि व्यास हैं वो तो भगवत अवतार हैं, नारद हैं, पराशर हैं और सब ऋषि लोग हैं। इसलिए यदि इन कथाओं को यदि कहें तो अनाधिकारी वो हैं, अनाधिकारी के निकट अपनी गोपनीय लीलाओं को प्रकाश करना ये उचित नहीं, इसलिए नहीं कहना चाहिए। यदि कोई कर्मी है ज्ञानी है उसको तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसको रासलीला कथा चिरहरण की लीला इत्यादि सुनाएंगे या उद्धव संदेश इत्यादि कथाएं, ये सब नहीं होगा। विशेष करके ज्ञानी लोग जो हैं इन कथाओं को प्राकृत मानते हैं, निर्गुण नहीं मानते, भगवान का जन्म कर्म वो लोग नहीं मानते, तो इसलिए भगवान की जन्म कर्म संबंधी लीलाओं का यदि वर्णन करते हैं तो उस पर वो विश्वास नहीं करेंगे। इस तरह से उनका भी अपराध हुआ, इनका भी अपराध हुआ। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के निकट में भगवान की ऐसी लीलाओं कथाओं का प्रकाश नहीं होना चाहिए। आप लोग भी तत्व इत्यादि की बात करेंगे, सब जगह ये मंजरी भाव और ये रास और ये सबको गोपन यथाजुक्त रखना चाहिए। इसलिए बतला रहे हैं ये किसको गोपन रखना उचित है, इसलिए परीक्षित की सभा में परीक्षित महाराज जी को तो लीला कथा श्रवण करने की अत्यंत लालसा है, उनका विश्वास भी है, कृष्ण के बड़े कृपा पात्र हैं, ये तो योग्य है। और बाकी उसमें सुखदेव ये व्यास जी हैं, नारद जी हैं, ये तो कुछ है, किंतु अधिकांश 99% लोग कर्म ज्ञानी जोड़ी पर क्यों कभी सुख विश्वास नहीं करेंगे। अरे भगवान जो पर ब्रह्म है, निराकार है, उनका जन्म थोड़ा होता है, इसलिए उसकी खिली लाएंगे, इसलिए इनसे नहीं कहना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी क्या ये जानते नहीं है? ये जानते हैं, किंतु भागवत प्रधान करने का ये लक्षण है जो पहले बताया, भागवत प्रधान वही है जिसके देखने से ऐसे कृष्ण प्रेम, जिनके देखने मात्र से ही कृष्ण प्रेम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जहां पर परीक्षित महाराज जी सभा में हरि कथा कर रहे हैं, दर्शन से ही वो कृतार्थ हो जाते हैं सब लोग, और पुनः यदि दर्शन के साथ साथ अपने हरि कथा इत्यादि देकर उनका चित्त संशोधन नहीं होगा। ये कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी के लिए हो सकता है जो ऐसा प्रयास ना करे, किंतु उत्तम भागवत में ये क्षमता है, शक्ति है, वो सबको भी प्रदर्शन करे, कर्म ज्ञानी जो भी जितने हैं सब लोगों का चित्त प्रवर्तन कर सकते हैं, जैसे नारद जी के लिए है। प्रहलाद महाराज जी को गर्व में ही वो चीज श्रवण के द्वारा ये कर दिया, व्यास जी ने ऐसा कर दिया, इन लोगों के लिए संभव। इसलिए इस शब्द के द्वारा भागवत प्रधान के लक्षणों से देखने से यह है, पहला लक्षण क्या है, जिनके देखने से ही कृष्ण प्रेम दूसरों को आ जाए, नाम स्मरण होंगे, ये भागवत प्रधान है, इसलिए इनको भागवत प्रधान। ये वहां पर जितने लोग थे अपने दर्शन जैसा संस्मरण क्या है, एकादश स्कंद जैसा संस्मरण पुरुषो शब्द वो पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है, अपना अपने दर्शन दे करके यदि हरि कथा कहे तो कोई बात ही क्या, इसलिए उत्तम अध्ययन कार्य होने के नाते उनके अंदर में जैसी वासना क्यों न हो, उत्तम अधिकारी के अचिंत शक्ति के प्रभाव से श्री श्री राधा गोविंद के चरणों में श्रवण की वासना उत्पन्न हो जाती है। यदि कृष्ण के संपर्क से काली जैसे अत्यंत विरोधी, उसको क्या कहा जाएगा, कर्मी कहा जाए, न ज्ञानी कहा जाएगा, न असुर कहा जाएगा, क्या कहा जाए, कृष्ण का विरोधी असुर तरह एक तरह से आ देखो, उसको प्रेमाभक्ति हो गई। भगवान और भक्त भी अभिन्न है, इसलिए इनके द्वारा यह संभव, इसलिए इनको पहला नंबर बताया गया भागवत प्रधान। सब उत्तम श्लोक पदार बिंदु निषेवया अकिंचन अकिंचन शब्द लब्ध्वा तन्मन परान प्रतिमात्मन मुहुर् दुस्संगम दीनस्य मन समार। इसका अर्थ है प्रहलाद महाराज जी के चरित्र में इसे श्लोक को बताया गया है, स उत्तम श्लोक पदार बिंदयो निषेवया अकिंचन संग लब्ध्य। प्रहलाद महाराज जी कितने 7000 वर्ष तक अपनी माता के घर में रहते समय में अकिंचन और उत्तम श्लोक के चरणों में जिनकी प्रेमा भक्ति है, निश्चला भक्ति है, ऐसे अकिंचन भक्त जो नारद हैं उनके संग से तन्मन परम अपने हृदय की भक्ति उनमें तन्मन विस्तार कर लिया, जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में प्रेमा तेने ब्रह्म आदि करे, उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के हृदय में नारद जी ने भक्ति का संचार किया और परम आनंदमय हो गए प्रहलाद महाराज जी। जन्म से ही मुहूर्त दुख संग दीनस्य मन समन व्यधर भक्तमणि भक्त चूड़ामणि प्रहलाद मातृगर्भ में पराते समय में महर्षि नारद ऋषि के संग और उपदेश से गोविंद चरणों में स्मृति लाभ करके सर्वदा प्रेमानंद में पुलकित रहा करते थे और इनके संग महिमा से प्रहलाद महाराज जी के संग में जितने असुर बालक उनके यहाँ पाठशाला में पढ़ते थे उन्होंने सबको भक्ति में बना दिया। ये प्रहलाद महाराज जी ने प्रहलाद महाराज जी के संग से ये हुए और प्रहलाद महाराज जी के संग से समस्त लड़कों को एकदम कीर्तन मंडली बना करके परम साधु बना दिया। ये प्रहलाद महाराज जी का जीवन, जिनको भगवत भक्ति का बंध नहीं था उनको कवि कहे ना योगी कहेंगे ना ज्ञानी कहेंगे ना क्या कहें, विषय भोग की वासनाएं भरी पड़ी थी, कुछ भी ज्ञान नहीं था। इनके चित्त को शांत भाव ला करके कृष्ण भक्ति में भर दिया। ये भागवत प्रधान कौन? प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज जी भागवत और ये भी सुखदेव गोस्वामी भागवत दोनों को पास में रख दो और विचार करो कि इन दोनों में भागवत प्रधान कौन है। नहीं, मुश्किल नहीं है। जो कृष्ण की भक्ति में रस में रंगे हुए कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और गोपियों की चरण की महिला बंदे नंद भर जय स्त्री नाम आशा मुहु चरण रे निजाम इत्यादि जो कह रहे हैं कहवा रहे हैं और कृष्ण को तो गोपियों के संदेश में मधुपकित बंधो मास किसान ग्रीस पत्ना इत्यादि जो कह रहे हैं और जबकि सूर्य ग्रहण हुआ उसमें कौन सा वो उसके पहले का चिराग अभिष्टम गुप्त गुप्त चिराग अभिष्टम कृष्ण चिराग अभिष्टम अपने हृदय में कृष्ण को अपने पलकों से हृदय मिले गए और उनको आलिंगन करके पास में बैठ सकल ये सब कौन प्रहलाद महाराज जी वर्णन किए। वो कहेंगे ये सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासख्यात्म निवेदनम इति पुरुषार्थिता विष्णु चे भव लक्षणा क्रियेत भगवती अभ्या तन्मन्य भेत मुक्तमं। हाँ, एक श्लोकों में ऐसा दिया गया है जो शांत दास सुख बात्सल्य मधुर इनमें से कोई आश्रित करके कृष्ण से संबंध होकर के भजन करे इस संबंध ज्ञान के साथ में बहुत जल्दी उसकी किंतु इस रूप से उन्होंने वर्णन नहीं किया। और ये भागवत प्रधान भी यही भी है वो सर्वत्र अपने इष्टदेव को देखते हैं किंतु सुखदेव गोस्वामी कैसे देखते हैं? राधा जी के हाथों में खेले हैं और ऐसे ऐसे भाव को भी प्रश्न किया। भागवत जैसा सब चूड़ामणि ग्रंथ सप्तम स्कंध से और दशम स्कंध से तुलना की जाए राजपंच अध्याय से तो मालूम पड़ेगा कि कौन सा शब्द। इसलिए इनको कहा गया भागवत प्रधान। भागवत प्रधानों में भी ये परम भागवत है नंबर, इसलिए ये भागवत
प्रधान।
दूसरा भी बात का क्या बतलाया बल्यास्तकी और एक भगवान भगवान और शब्द का अर्थ बतला रहे हैं भगवान और कितना बजा सात बजिया का यही तक रहने का एक शब्द का यहां व्याख्या किया फिर उसमें भी तक खूब अच्छी तरह से समझो ऐसे उत्तम भक्तों का संग ग्रहण हो इसकी लालसा हो और हम भी ऐसा भागवत होकर के कृष्ण की सेवा कर सके इसकी लालसा जो लोभ उत्पन्न इसके लिए प्रयत्न किया जाए। ये प्रकार के भक्त सब प्रकार के काम क्रोध लोभ मद मोह कर्म ज्ञान योग तपस्या छोड़ करके संन्यासविलास शून्य होकर के ज्ञान कर्म को छोड़ करके अनुकूल्य ने कृष्णानुशीलन होता है ऐसा यदि करें तो ऐसी भक्ति
वंशा प्रकाशवादम दैया सखी स भगवान मत विष्णु प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम कलिकल्म शब्दम व्याह सिंहारभत भागवत प्रधान कल इस श्लोक की टीका मैंने बतलाई थी जिसमें सुख गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रधान बतलाया और वैयासकी भगवान और विष्णु वैयासकी भगवान और भागवत प्रधान उनको तीन बताया और उनको विष्णु राग बतलाया और शिव महाराज को विष्णु राग बतलाया महाराज जी सुत गोस्वामी जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को साधुवाद दिया क्योंकि उन्होंने उनकी प्रशंसा की है उत्साहित किया है कृष्ण कथा पाने के लिए और वैसे प्रश्न जिसमें उन्होंने वैयासकीय शब्द का तात्पर्य बतलाया भागवत प्रधान का तात्पर्य बतलाया भागवत प्रधान ने यह बतलाया जो श्रीमद् भागवत ने बतलाया विसृजति हृदयं न जस्य साक्षात् हरि अवसात् अभियुतो अपि अगौनाश प्रणय रसनयाद्रितांग पद्म स भवति भागवत प्रधान बहुत से बतलाया है 10-12 श्लोक में किंतु इसको लिख दिया जिसका ये तात्पर्य है कि तो सब समय अपनी प्रणय रूपी रसना के द्वारा रसी के द्वारा भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में बांध करके रखते हैं और एक भक्त के लिए एक सेकंड के लिए भी अपने हृदय से उनको कभी नहीं त्याग करते इसलिए ये उत्तम भागवत का चैतन्य चैतामृत में अर्थ दिया तात्पर्य जिनको सब समय भगवत स्फूर्ति होती है स्थावर जंगम ना देखे मूर्ति मूर्ति को सही मूर्ति को नहीं देख करके वो कृष्ण की सेवा में कृष्ण की सेवा में सब समय संलग्न है ये देखते हैं उसके सर्वगत प्रेम को वो दर्शन करते हैं और दिल के देखने से दृष्टि मात्र से ही प्राणी मात्र में प्रेम का संचार हो जाता है देख ले आयुष्य कृष्ण प्रेम उनके दर्शन मात्र से उसको कृष्ण प्रेम हो जाता है तो ये बतलाया कि उस सभा में परीक्षित महाराज जी की सभा में अधिकांश लोग कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी विषयी मूढ़ सब प्रकार के लोग उसमें हैं इसलिए कृष्ण कथा रूपी अत्यंत रहस्य युक्त लीला कथाओं को उस समय